ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस वर्ष के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आने वाले रविवार को है, परंतु हम पूर्व तैयारी में शारीरिक रूप से और आंतरिक मानसिक रूप से हम भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव दिवस के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन कर कर, जैसे कि हम हर वर्ष करते हैं। मेरे ख्याल से तीसरा वर्ष है। श्रील प्रभुपाद की बहुत कृपा है और उनका अनुग्रह है कि हमें यह अवसर हर वर्ष मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर एक हफ्ता पूरा विशेष रूप से केवल भगवान श्री कृष्ण उनकी दशम स्कंद की लीला का श्रवण कीर्तन हम पूरे इस एक हफ्ते भर कर सकते हैं। और यदि आपको याद होगा कि पिछले साल हमने दशम स्कंद से श्री दामोदर लीला ली थी और हमने शुरुआत की थी दामोदर लीला की, और कहाँ तक पहुंचे थे हम 7 दिन में? यहां तक। अब तक भगवान खड़े हैं बंधे हुए। माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया उखल से और उनको नाम मिला दामोदर इसके पश्चात। और क्योंकि हमारे पास समय नहीं था तो इसके आगे की लीला हम पिछले वर्ष नहीं सुना पाए, इसलिए भगवान को 1 साल तक उखल से बंधे रहना पड़ा। अब तक वैसे ही हैं तो शायद इस साल उनकी रिहाई होगी। यदि माता यशोदा और नंद महाराज उनके ऊपर उनका प्रेम और कृपा बरसाएंगे, और हालांकि सुखदेव गोस्वामी अपनी श्रीमद् भागवत की लीला द्वारा, तो माता यशोदा ने जब भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया और काफी परिश्रम लगा माता यशोदा को भगवान को उखल से बांधने में, हम सब जानते हैं इस कथा को कि दो उंगल छोटी पड़ रही थी रस्सी, और भगवान की ही योजना थी। तो ये सबके लिए संकेत है कि या तो सेलफोन आपके पास है तो उसे बंद कर दीजिए, या फिर उसे लेकर आप बाहर जा सकते हैं। अच्छा लॉन है बाहर, वहां पर घूमकर बात कर सकते हैं। तो भगवान ने देखा कि माता यशोदा वो इतना प्रयास कर रही हैं, इतना भरसक प्रयास माता यशोदा का हो रहा है भगवान को बांधने में, और हरे कृष्णा अंतिम अनाउंसमेंट, सेलफोन सभी लोग बंद कर दीजिए। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं अपना ऐश्वर्य दिखाऊं माता यशोदा के सामने तो उसमें वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं मैं अनुभव कर पाऊंगा, और भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए अपनी लीला नहीं करते। भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अपनी लीला करते हैं। इसलिए और विशेष रूप से वृंदावन में, ब्रज धाम में, और विशेष रूप से माता यशोदा के साथ, माता यशोदा के साथ तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि माता यशोदा उनके ऐश्वर्यों को देखकर एक आदर का भाव अपने अंदर लाए, भगवान बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहे हैं कि जब गोपियां मुझे गाली देती हैं, शिकायत करती हैं, तो वो गोपियों की गाली और उनकी शिकायत मुझे बड़े बड़े वेद स्तुतियों से ज्यादा मधुर लगती है। जो बड़े ऋषि मुनि जब वेद स्तुति करते हैं तो भगवान कहते हैं कि कई बार मुझे नींद आ जाती है उसमें, परंतु जब माता यशोदा मुझे डांट फटकारती है, गोपियां मेरी शिकायत करती हैं, तो उसमें जो मुझे आनंद, उसमें जो मुझे रस मिलता है, वो मुझे और किसी स्तुति में नहीं मिलता। तो ये एक प्रयोजन जिसके लिए भगवान अवतरित हुए, और माता यशोदा यहां पर इतना प्रयास कर रही है भगवान को दंडित करने के लिए, तो भगवान को मानना ही था। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्त और भगवान की स्पर्धा में भक्त जीत गए और भगवान बंदी बन गए अपने भक्त की। हरे कृष्णा। मराठी में अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। या तो सभी सेलफोन ऑन कर दीजिए, मैं जाता हूं। तो भगवान फिर माता यशोदा के सामने हार गए, और सुखदेव गोस्वामी अब उस अध्याय के अंत में माता यशोदा ने अब बांध दिया, इस अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी अब इतना उत्सुक हो रहे हैं परीक्षित महाराज को माता यशोदा का गुणगान करने के लिए, माता यशोदा का स्तर बताने के लिए, कि कहीं परीक्षित महाराज ये ना समझ लें कि ये माता यशोदा ने कोई अपराध कर दिया, कहीं परीक्षित महाराज ये ना समझ लें कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार से एक कैदी के समान बांध दिया। तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत, जैसे ही भगवान अब बंद गए उखल पर, तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत माता यशोदा का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं, और वो कहते हैं, नेमं विरंचो न भवो न श्रीर अप्यंग संश्रय प्रसादम ले भिरे गोपी यत्त प्राप विमुक्तिदात। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये एक गोपी, माता यशोदा को यहां पर गोपी कह रहे हैं, परंतु कोई साधारण सी गोपी नहीं, लेभिरे प्रसादम गोपी, कि जिसे ऐसा प्रसाद मिला, ऐसी कृपा मिली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, न विरिंचो, विरिंच कौन है, ब्रह्मा जी, न ब्रह्मा जी को ऐसी कृपा मिली, न भव, न भगवान शिव जी को ऐसी कृपा मिली, न श्री अप्यंग संश्रय, न लक्ष्मी देवी को जो कि अर्धांगनी है भगवान की, उनको भी ऐसी कृपा नहीं मिली जो माता यशोदा को मिली। यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात, केवल कृपा ये नहीं थी कि माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया अपनी भक्ति में, माता यशोदा ने तो अपनी भक्ति में बांधा था, परंतु यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस बंधन दाम बंधन से माता यशोदा विमुक्तिदा, माता यशोदा के सारे बंधन छूट गए। तो भगवान को बांधने से माता यशोदा के सारे बंधन टूट गए, अर्थात कि माता यशोदा का स्तर ब्रह्मा जी शिव जी यहां तक कि लक्ष्मी देवी इन सब से इतना ऊंचा। प्रसादम ले भिरे गोपी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत रस लेकर यह श्लोक सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। मानो सुखदेव गोस्वामी प्रतीक्षा में थे कि कब वो माता यशोदा का गुणगान इस प्रकार से करेंगे। और इसके पश्चात फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुत ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मताम इह। कि खैर ये सब तो अपने अपने गुण अवतार स्तर पर हैं, लक्ष्मी देवी शिव जी और ब्रह्मा जी, परंतु कई जो साधक हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी माता यशोदा का स्तर कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, अपनी साधना में, योग साधना से, ज्ञान साधना से, कर्म साधना से जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को अपनी गिरफ्त में रखना चाहते हैं, वो भी माता यशोदा का स्तर कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। नायम सुखापो भगवान गोपिका सुत, हालांकि भगवान को भगवान कह रहे हैं, कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, परंतु कह रहे हैं कि इन सब योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए वो भगवान होंगे, परंतु यशोदा के लिए क्या है? गोपिका सुत। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो कि युग अवतार कलयुग में हमें हरिनाम देने, जो युग अवतार युग धर्म है वो देने आए, तो जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण के सभी नामों में से कौन से नाम भगवान के सबसे प्रमुख, तो सोचिए यदि जो युग अवतार हैं हमें युग धर्म हरिनाम देने के लिए आए वो क्या उत्तर दिए होंगे। तो उनको जब पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण के सभी नामों में से कौन सा नाम और कौन से नाम, चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से कहा कि ये सबसे प्रिय हैं उनको, दो नाम बताए चैतन्य महाप्रभु ने, एक श्याम सुंदर और दूसरा यशोदानंदन, कि ये दो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार प्रमुख नाम भगवान के। ये मत समझना कि हरे कृष्ण महामंत्र में जो भगवान का नाम है कृष्ण या राम वो कोई कम है, हालांकि भगवान के सभी नाम समान हैं, परंतु यहां पर चैतन्य महाप्रभु याद कर रहे हैं भगवान श्री राधिका रमण और भगवान श्री यशोदानंदन इनकी लीलाओं को। सो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने यशोदानंदन, यशोदा इनका गुणगान करते हुए कहा, जो भगवान को यश दे वो है यशोदा, जो भगवान का यश बढ़ाए वो है यशोदा। परंतु इस लीला में भगवान ने यशोदा का यश बढ़ाया दामोदर लीला में, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को कि उन भगवान ने माता यशोदा का स्तर स्थापित कर दिया, कि माता यशोदा का स्तर कोई नहीं ले सकता। इसलिए एक बार एक भक्त जब श्रील प्रभुपाद को पूछ रहे थे कि यदि हम माता यशोदा की तरह भगवान की सेवा करना चाहें तो क्या वो ठीक है, तो प्रभुपाद ने तुरंत रोक दिया, माता यशोदा का स्तर कोई नहीं ले सकता। श्रील प्रभुपाद ने कहा यह मायावाद है एक तरीके का, कि ये बात सोचना भी कि कोई माता यशोदा का स्तर ले सकता है, एक प्रकार का मायावाद प्रभुपाद ने कहा। तो माता यशोदा का यह स्तर है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बंदी बने हुए खड़े हैं, उखल से बंधे हुए, जो कि सबको विमुक्ति दे रहे हैं परंतु स्वयं बंधे हुए कैदी के समान, एवं संदर्शित अंग, और सभी ईश्वरों को दिखा रहे हैं कि देखो ये माता यशोदा का प्रेम मेरे प्रति कितना है। तो अब इसके आगे सुखदेव गोस्वामी लीला को बढ़ाते हुए कहते हैं कि जैसे ही माता यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया, इस सामने चित्र में है, तो माता यशोदा ने अब किया क्या? अब देखिए, हम जब यशोदा दामोदर का चित्र देखते हैं, ऑल्टर पर रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? दामोदर अष्टक गाते हैं, दीप अर्पित करते हैं। तो यहां पर तो ओरिजिनल दामोदर की लीला हुई माता यशोदा के सामने, तो क्या माता यशोदा वहां पर दामोदर अष्टक गाने लगी है? रसोई घर से दीप लाकर चलो, सबसे पहला दीप और सबसे पहला दामोदर अष्टक मुझसे होना चाहिए? नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायां मातरी प्रभु अद्रक्षित अर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनतात्मजौ। कृष्णस्तु गृह कृत्येषु, जैसे ही माता यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया, माता यशोदा गई किचन में, गृह कृत्येषु, अपना गृह कार्य फिर से जो छोड़कर आई थी उसे फिर से शुरू किया करना। तो अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि माता यशोदा क्या अनन्या भक्त थी क्या भगवान की? ये गृह कार्य में क्या लगी है? अरे यहां पर तो कार्तिक के महीने में हम दिन रात दामोदर अष्टकम गाते हैं, यहां पर तो ओरिजिनल दामोदर सामने बंधे हुए हैं उखल से, तो ये गृह कार्य में क्यों चली गई करने के लिए अपना सब कुछ? तो इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी पहले ही शब्द से देते हैं इस श्लोक के, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु, कि वो गृह कार्य किसके लिए था? वो दूध उबालना, उसका दही लगाना और उसका मंथन कर माखन निकालना, जो कुछ यशोदा मई करती, जो कुछ कोई भी करता वृंदावन में, वो गृह कार्य कृष्णस्तु, वो कृष्ण को अर्पित करते हुए करते हो। इसलिए यहां पर माता यशोदा हमें सिखा रही हैं कि जो कुछ हम करें, चाहे गृहिणी घर का कार्य करे या पति जाकर बाहर का कोई कार्य करे, सभी कार्य के केंद्र कृष्णस्तु होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। माता यशोदा जैसी भक्त कौन हो सकती हैं? माता यशोदा जैसी कृष्ण भावना भावित भक्त कौन हो सकती है कि जो कभी बिना कृष्ण के स्मरण के एक क्षण भी नहीं रह सकती? तो जो उत्तम अधिकारी इस प्रकार का भगवान का पार्षद, जो हर क्षण भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में रहे, वो कोई और कार्य कैसे कर सकता है? इसलिए दामोदर लीला की शुरुआत में बताया गया है कि जब भगवान सोए हुए थे तो माता यशोदा जब मंथन कर रही थी दही का, तो दही के मंथन के साथ, दही का मंथन तो केवल एक बहाना था, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रही थी। जैसे कि हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में जब ब्रह्मचारी को बुलाया जाता था किसी किचन के काम के लिए, कि कोई फीस्ट की तैयारी करनी है, सब्जी काटने के लिए सभी नीचे आओ किचन में, और बहुत सी सब्जियां, इतनी सारी सब्जियां उसको काटने में कई घंटे लगते थे, तो हम अनुभव करते थे कि कई ब्रह्मचारी इतनी उत्सुकता से दौड़ दौड़ कर जाते थे कि हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये फेस्टिवल आएगा और फेस्टिवल से ज्यादा कब हमें सब्जी काटने के लिए बुलाया जाएगा। परंतु ये उत्सुकता होती क्यों थी? क्योंकि वो सब्जी काटते समय इतना लेक्चर सुन सकते हैं बैठ बैठे, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन सकते हैं। क्योंकि ऐसे केवल बैठकर भगवान की कथा सुनना किसी कैसेट से तो वो उनसे नहीं हो पाता था, परंतु कुछ कार्य करते समय, वो भी भगवान का कार्य करते समय, भगवान के विषय में सुनना और आसान हो जाता था। क्योंकि एक तो चाकू हाथ में और एकदम धार वाला तो सो भी नहीं सकते, वो चाकू उठा देगा। तो इसलिए इतनी उत्सुकता रहती। तो माता यशोदा वो जो भी कार्य करती तो उसमें भगवान का कीर्तन, और वो भी माता यशोदा ओरिजिनल कीर्तन कंपोज करती। माता यशोदा जो भी लेटेस्ट पास्ट टाइम अभी भगवान का हुआ है, कल ही का या आज ही का, कि आज भगवान ने वन में इस असुर का वध किया या भगवान ने माखन की लीला इस प्रकार से की, तो जो सबसे लेटेस्ट पास्ट टाइम उसको गीत में परिणित कर कर माता यशोदा उस दिन गाती अपना गृह कार्य करते समय। तो माता यशोदा यहां पर हमें सिखा रही हैं कि चाहे माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से कुछ सेवा करे उनकी, या फिर अव्यक्तिगत रूप से माता यशोदा कुछ करे, दोनों ही कृष्ण गृह कृत्येषु, ये हमें समझना चाहिए। और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बहुत चुनिंदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं व्यग्रायाम मातरी, एकदम व्यग्र रहती थी, व्यस्त। माता यशोदा के पास एक भी ऐसा समय नहीं था कि माता यशोदा सोचती अब क्या करूं भगवान के लिए, अब क्या करूं। कई बार ये प्रश्न हमारे मन में आता है ना, 16 माला हो गया अब क्या करूं। तो ऐसा नहीं था माता यशोदा बैठकर सोचती थी कि अब भगवान के लिए कुछ करने लायक है या नहीं। 24 घंटे कम पड़ते थे, तो पूर्ण प्रकार से व्यग्र मातरी माता यशोदा। और जब माता यशोदा चली गई कृष्ण गृह कृत्येषु, कृष्ण के गृह कार्य में, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अब बंधे हुए अकेले। हालांकि सब गोप सखागण वहां पर पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि आज हमारे जो सरदार हैं वो लेट हैं, बाहर आए नहीं। तो उन्हें न्यूज मिला कि आज तो अंदर कुछ कांड हुआ है और हमारे प्रभु उनको दंडित किया गया है, बंधे हुए हैं। तो सारे गोप सखागण वहां पर छिप छिप के, जब माता यशोदा नहीं तो छिप के देख रहे थे कि किस प्रकार से दंडित किया है। तो कईयों को तो बहुत बुरा लगा और कई थोड़ा खुश हो रहे थे कि हाँ थोड़ा मिलना चाहिए, हर समय हमें डांट फटकार मिलती है, पता लगना चाहिए कि किसके वजह से मिलती है। तो आज जिसको मिली है ठीक है। तो भगवान अब जानते थे कि ये लोग तो खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वात्सल्य रस में रस्सी बांधी गई है और ये सब सख्य रस के हैं, तो वात्सल्य रस सख्य रस से ऊंचा है। तो ये लोग सब भगवान से आकर मिले, कैसे हो, ठीक हो, हाँ अच्छे दिखते हो, इस पे बंधे हुए आते हैं, फिर शाम को मिलने आते हैं, जैसे हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाते हैं ना, हाँ ठीक है हॉस्पिटल का टाइम हो गया, विजिटिंग आवर्स, कल आते हैं मिलने के लिए। तो भगवान अब अकेले खड़े बंधे हुए। परंतु भगवान, देखिए भगवान के पास भी ऐसा नहीं कि कोई फ्री टाइम या लीजर टाइम होता है कि भगवान अब सोचने लगे कि अब क्या करें। और विशेष रूप से वृंदावन में तो हर क्षण कोई ना कोई लीला भगवान की चलती रहती। तो भगवान ने सोचा कि अब ये दामोदर लीला तो हो गई, मतलब अब बंद गया मैं, मुझे नाम मिल गया दामोदर, अब इसके बाद क्या? तो सुखदेव गोस्वामी, अब परीक्षित महाराज को देखिए, सुखदेव गोस्वामी भी केवल संकेत देते हैं और वो परीक्षित महाराज को परख रहे हैं कि परीक्षित महाराज इस संकेत को उनका समझते हैं कि नहीं। तो एक श्लोक में केवल संकेत दिया कि खड़े हुए दामोदर, बंधे हुए दामोदर अब क्या सोच रहे थे, कहां देख रहे थे। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी का भाव ऐसा है कि सुखदेव गोस्वामी मानो बगल में भगवान को बंधे हुए देख रहे हैं, ऐसे बगल में है। तो परीक्षित महाराज को दिखाने, देखो ये खड़े इधर। और परीक्षित महाराज भी इतना अचरत से सुखदेव गोस्वामी की तरफ देख रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी इतने निमग्न हो गए उस लीला में कि परीक्षित महाराज को ऐसा सुना रहे हैं कि यहां पर ये देखो दामोदर बंधे हुए उखल से। देखिए इस प्रकार का भाव होना चाहिए श्रवण कीर्तन के समय। अब यदि हम कहें देखो बंधे हुए हैं उखल से, तो पहले तो हमें जगना पड़ेगा देखने के लिए, और फिर हम क्या, हाँ तो आते ही देखा था ना, ऊपर है, पिछले साल भी देखा, उसके बहुत साल से देख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इतनी उत्सुकता से बता रहे हैं कि वो बंधे हुए, और कहते हैं प्रभु अद्रक्षित अर्जुनौ पूर्वम। अब यहां पर देखिए सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को कृष्ण या गोविंद या दामोदर इस नाम से नहीं पुकारा। सुखदेव गोस्वामी अब भगवान को कहते हैं प्रभु, कि वो प्रभु बंधे हुए अदृक्षित अपनी आंखों से देखने लगे। तो प्रभु क्यों कहा, कौन इसका उत्तर दे सकता है? कि भगवान को और कोई नाम उल्लेख नहीं करते हुए सुखदेव गोस्वामी बंधे हुए दामोदर को प्रभु क्यों बुला रहे हैं? इसमें विरोधाभास दिखता है ना, कि अरे प्रभु हैं तो कैदी के समान कैसे बंध गए। ठीक है यदि दामोदर नाम पुकारा होता तो समझ लिया होता कि बंधे हुए दामोदर, उधर से दाम से बंधे हुए। तो यहां पर प्रभु क्यों पुकार रहे हैं? क्या सुखदेव गोस्वामी परिहास कर रहे हैं भगवान का कि व्यंग्यात्मक दृष्टि से पुकार रहे हैं, ये देखो प्रभु बंधे हुए, क्यों पुकारा प्रभु अब उनको? हाँ, सबके मालिक, सबका मालिक एक है। हाँ क्या, हाँ नहीं, लेकिन ये तो विरोधाभास हो गया ना, अगर पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं तो फिर वो कैसे बंधे हुए हैं? इनके उखल से बंधे हुए होने के वजह से अब ये अपनी प्रभुता दिखाएंगे। कौन सी प्रभुता? नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार करेंगे, उसमें अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे। इतने बड़े बड़े अर्जुन वृक्ष को गिराएंगे अब ये, तो इतना बड़ा कार्य करना, इतना बड़ा पराक्रम करना, ये प्रभु का काम है। तो अब उनका ऐश्वर्य सामने आने वाला है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी संकेत दे रहे हैं। देखिए उन्होंने बहुत ही सावधानी से ये शब्द इस्तेमाल किया है ताकि परीक्षित वो समझ लें कि अब आगे की कौन सी लीला उनको सुननी चाहिए। इसलिए कहते हैं प्रभु अद्रक्षित, प्रभु बंधे हुए अपनी आंखों से उन्होंने देखा किसको? अर्जुनौ पूर्वम, अर्जुन वृक्षों को देखा। तो मानो परीक्षित महाराज के अंदर अब यह प्रश्न उठना शुरू हुआ कि बंधे हुए अर्जुन वृक्ष को देखा, क्या संबंध है इसका? वो बंधे हुए हैं और उनके वहां आंगन में दो अर्जुन वृक्ष, वो तो कितने पिछले युग से वहां पर खड़े हैं वो अर्जुन वृक्ष, तो इतने सहस्त्रों वर्षों से वो अर्जुन वृक्ष वहां पर खड़े हुए हैं, ये भगवान बंधे हुए उनको क्यों देख रहे हैं? तो ये धीरे धीरे सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी आगे की लीला सुनाना चाहते, परंतु सुखदेव गोस्वामी आगे की लीला तब सुनाएंगे जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे। तो वो उकसा रहे थे परीक्षित महाराज को कि ये जो मैं संकेत दे रहा हूं थोड़ा समझो। और परीक्षित महाराज इतने बुद्धिमान, ऐसे हमारी तरह नहीं कि हमको सब कुछ लीला सुनने के बाद भी जब हम पढ़ते हैं तो दो अध्याय बाद समझ में नहीं आता कि ये अध्याय शुरू किसने किया था, ये श्लोक बोल कौन रहा है, कौन किससे बोल रहा है ये श्लोक, फिर से जाना पड़ता है अध्याय की शुरुआत में। अच्छा 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 अच्छा, सुखदेव गोस्वामी अब तक बोल रहे हैं, अब तक भागवत चल रही है। तो यहां पर जैसे ही सुखदेव गोस्वामी अब कहते हैं कि अर्जुनो पूर्वम, ये दो अर्जुन वृक्ष जो पूर्व से खड़े हुए वहां पर बहुत समय से खड़े हुए, और फिर सुखदेव गोस्वामी ने एक और संकेत दिया, गुह्यकौ धनद आत्मजौ, धनद ये कुबेर का नाम है, और धनद आत्मजौ का अर्थ है कि कुबेर के ये पुत्र। अब देखिए, तो बहुत बड़ा संकेत परीक्षित महाराज को दे दिया कि दो अर्जुन वृक्ष, सबसे पहले तो प्रभु, सबसे पहला संकेत क्या कि दामोदर नहीं पुकारा प्रभु, अदर्शित देखा किसे, पूर्वम अर्जुनों, बहुत प्राचीन अर्जुन वृक्षों को देखा, और वो अर्जुन वृक्ष कौन थे, धनद आत्मजौ, कुबेर के आत्मज। तो ये चार संकेत दे दिए अब परीक्षित महाराज को। अब यहां पर देखिए, हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान बंधे हुए उखल से भगवान के मन में क्या चल रहा था, सोचिए आचार्य उनके साक्षात्कार में कितने प्रगत हैं कि भगवान के मन में क्या चल रहा है वो हमें उनकी टीकाओं में लिख कर देते हैं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर वो कहते हैं कि भगवान उखल से बंधे हुए भगवान सोच रहे थे कि मुझे माता यशोदा ने इतना प्रेम दिया है आज कि मैं इस प्रेम को, इस कृपा को अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। अब सोचिए, बाहरी दृष्टिकोण से तो डांट फटकार कर वहां पर दंडित किया गया है, परंतु भगवान उसे माता यशोदा का प्रेम और उनकी कृपा मान रहे हैं। तो भगवान सोच रहे हैं बंधे हुए कि इतना प्रेम, इतनी कृपा मुझे माता यशोदा ने आज दी है जो मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, इसीलिए भगवान ने इन दो वृक्षों को देखा कि चलो इनके ऊपर बांटता हूं माता यशोदा की कृपा। ये इतने समय से खड़े हैं यहां पर, दंडित हैं, शापित हैं, तो चलो इतनी कृपा मैं अकेले एक स्वार्थी की तरह अपने में क्यों रखूं, क्यों ना मैं इनको बांटूं। इसलिए अदर्शित प्रभु अर्जुनो पूर्वम गुह्यकौ धनद आत्मजौ, उनको इस प्रकार से देखने लगे। तो भगवान अब जो देख रहे हैं इन दोनों वृक्षों को, भगवान तो बचपन से देख रहे थे इन दोनों वृक्षों को, परंतु अब जो देख रहे हैं वो माता यशोदा के प्रेम और कृपा के अक्ष से देख रहे हैं कि माता यशोदा और उनकी, उनका प्रेम और उनकी कृपा अब मेरे अंदर, मेरे अक्षों में है, उन कृपा कटाक्ष से मैं इनको देख रहा हूं और इनका उद्धार अब इस प्रेम माता यशोदा का देकर मैं करूंगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब किसी भक्त को कृपा मिलती है भगवान की, तो उसे स्वार्थी के समान अपने पास ही नहीं रखना चाहिए, बांटना चाहिए दूसरों को, उस कृपा को सबको देना चाहिए। ये एक भक्त का लक्षण है। जैसे श्रील प्रभुपाद की तुलना यदि हम अब दामोदर लीला के इस प्रसंग से करें, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण दामोदर ने माता यशोदा का पूरा प्रेम और कृपा प्राप्त की, उसके पश्चात नलकोर और मणिग्रीव का उद्धार किया, वैसे ही श्रील प्रभुपाद भी वृंदावन में कितने वर्षों तक उन्होंने सब कृपा पहले इकट्ठी की, वृंदावन धाम की सारी कृपा इकट्ठी करने के पश्चात श्री प्रभुपाद ने सोचा कि इतनी कृपा मैं अकेले अपने पास नहीं रख सकता, तो जैसे अब दामोदर वहां से निकलकर आंगन में जाएंगे उसी प्रकार से श्री प्रभुपाद वृंदावन से बाहर निकले और गए कहां, अमेरिका, जहां पर बहुत से नलकुंवर और मणिग्रीव घूम रहे थे। यहां पर तो भगवान श्री दामोदर ने एक सेट, एक पैर, नलकुंवर और मणिग्रीव इनका उद्धार किया, परंतु श्रील प्रभुपाद जब वो वृंदावन से बाहर निकले तो जैसे भगवान श्री दामोदर बंधे हुए थे उखल से रस्सी और रस्सी उखल से बंधी हुई, वैसे श्रील प्रभुपाद भी जब वृंदावन से बाहर निकले नलकुंवर और मणिग्रीव जैसे कलयुगी लोगों का उद्धार करने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद भी बंधे हुए थे किससे? श्रील प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञा से बंधे हुए थे, तो उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर, उनका जो आदेश था वो जो आदेश है उसकी तुलना हम उखल से कर सकते हैं, परंतु उखल और भगवान के बीच में क्या था? रस्सी। उस रस्सी की तुलना हम कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद का विश्वास, जो आदेश मिला उस पर विश्वास, तो श्रील प्रभुपाद उस विश्वास की डोरी से अपने गुरु के उस उखल रूपी आदेश से बंधे हुए थे। और जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन से बाहर निकले अमेरिका की तरफ, तो वहां के नलकुंवर और मणिग्रीव का उद्धार वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने किया जैसे भगवान श्री दामोदर ने इन दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। इसलिए एक जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर समय ताक में रहते हैं कि कब अवसर मिले कि मैं भगवान की कृपा सबको बांटूं। तो जैसे भगवान श्री दामोदर वो वहां पर खड़े नहीं हो सके, एक क्षण के लिए भी वो अकेले, वो शांत रूप से, निश्चिंत रूप से खड़े नहीं हो सके, क्योंकि वो तुरंत इस कृपा को देना चाहते थे। वैसे ही श्रील प्रभुपाद तुरंत बांटना चाहते थे उस कृपा को। तो अब ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, नौवां अध्याय है दशम स्कंद का। अब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ नहीं करते दसवां अध्याय, जो अगला अध्याय अभी हम शुरू करने वाले हैं। ये अध्याय की शुरुआत होती है, वो अब इतना संकेत दे दिया तो सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए कि भगवान ने देख लिया दोनों वृक्षों को जो कि कुबेर के दोनों पुत्र थे। बस इतना कहकर सुखदेव गोस्वामी शांत हुए। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी शांत हुए, परीक्षित महाराज का प्रश्न, जो कि सुखदेव गोस्वामी अब उसकी अपेक्षा में थे, तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। कथ्यताम भगवान एतद् तयो शापस्य कारणम् यत्तत् विगर्हितम् कर्म येन वा देवर्षितमः। हालांकि एक और श्लोक में, वो श्लोक हमने लिया नहीं, उस श्लोक में और भी संकेत देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि इनको देवऋषि नारद ने शापित किया था। तो ये सब कुछ सुनने के पश्चात तुरंत अब परीक्षित महाराज का प्रश्न, कथ्यताम भगवान एतत्, कि ये आपने क्या सुना दिया, ये लीला के पश्चात ये जो आपने कुछ सुना दिया इसके आगे सुनाओ, ये इनको कौन है ये दो, और इनको शापित किस नारद मुनि ने क्यों किया, कौन सा ऐसा विगर्हित कार्य इन्होंने किया कि नारद मुनि जैसे शांत, नारद मुनि जैसे महाजन प्रगत भक्त को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए वो। ये नवा देवर्षि तमह, तमह का अर्थ है क्रोध में आ जाना। तो ये परीक्षित महाराज, यहां पर सबसे पहले परीक्षित महाराज का गुण हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज एक तो कितना ध्यान से सुन रहे थे, तो श्रवण के समय ध्यान होना चाहिए, और परीक्षित महाराज जैसे उत्सुकता, ठीक है, यदि कई बार हमें तो कितना भी संकेत दे दिया जाए, अब मान लीजिए कि हम सुन रहे हैं इस कथा को और कथा सुनते समय ये सुनाया गया कि भगवान श्री दामोदर उखल से बंधे अर्जुन वृक्षों को देखा, जो कि कुबेर के दो पुत्र थे, उन्हें शापित किया था नारद मुनि ने। अच्छा चलो, अब अगला अध्याय है भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता सुनाने जाने वाले। अरे वाह, इतने सारे अध्याय आगे चले गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कथाकार है, एकदम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो यहां पर परीक्षित महाराज का ध्यान देखिए, कितने ध्यान से सुन रहे हैं, तुरंत पकड़ लिया क्यों शापित किया, कौन थे ये, और वो भी नारद मुनि, उनको इतना क्रोध कैसे दिला पाए। ये सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि नारद मुनि जैसे शांत मुनि को कोई क्रोधित कर सके, वो भी कोई कम व्यक्ति नहीं होगा, उसमें भी कुछ दम होगा कि नारद मुनि को क्रोधित करा दिया। जैसे हमारे भक्त के समुदाय में यदि कोई एकदम शांत सुशील स्वभाव का कोई भक्त हो और यदि वो कभी क्रोधित हो जाए, तो कभी उनकी आवाज सुनी नहीं ऊंची आवाज, और जब पहली बार उनकी ऊंची आवाज कोई सुनता है, अरे, तो सभी ध्यान देते हैं। जो हर दिन ऊंची आवाज में बोलता है तो उस पर ध्यान कोई नहीं देता, परंतु कोई एकदम शांत, जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में संकीर्तन प्रभु ब्रह्मचारी हैं, एकदम शांत, वो कुछ कहते हैं तो आपको कम से कम उनके कान के एकदम 2-3 इंच पास, उनके मुंह के 2-3 इंच पास ही आपका कान लगाना होगा। एक तो इतना धीरे वो बोलते हैं और एकदम मृदु तरीके से, शांत तरीके से। यदि वो किसी को डांटते भी हैं तो आपको सुनना चाहिए वो डांटते कैसे हैं। जैसे जब वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए तो उनकी माता आई मंदिर में, हालांकि अभी वो भी भक्त हैं, तो उनकी माताजी आई, तो उनकी माताजी तो उनसे भी ज्यादा शांत स्वभाव की। अब दोनों का वार्तालाप हो रहा था कि उनकी माताजी इनके ऊपर गुस्सा कर रही थी कि क्या किया तुमने, और ये समझा रहे थे थोड़े ऐसे कठोरता से कि मैंने जो किया अच्छा किया। उनकी माताजी उस भाव में, उस शांत भाव में उनको, उनके ऊपर गुस्सा व्यक्त करी, क्रोध व्यक्त करी कि क्या किया तुमने। तो वो भी एकदम शांत तरीके से वो भी क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, कहते हैं तो ठीक नहीं किया मैंने। इस प्रकार से आप यदि सुनेंगे तो लगेगा क्योंकि प्रेम का वार्तालाप चल रहा है कि दोनों कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा किया, ओके यही करने के लिए पैदा किया था तुम्हें। तो ये फिर शास्त्र को कोट कर बता रहे। एक बार संकीर्तन प्रभु के साथ मैं एक कार्यक्रम के लिए जा रहा था, तो हम 3 भक्त थे, मैं, संकीर्तन प्रभु और एक पहले हमारे मंदिर में थे भक्त श्रीनिवास प्रभु, गोविंद प्रभु के बड़े भाई। तो श्रीनिवास प्रभु वो क्षत्रिय भाव के भक्त हैं, मतलब उनका कीर्तन भी वो 5th मोड पे शुरू होता है, 1st पार्ट जो भी वो शुरू करते हैं, वो माइक वाइक की कोई आवश्यकता, उनका कीर्तन उस लेवल से शुरू होता है और बोलने में भी सब उनके हाव भाव वैसे। तो मैं, श्रीनिवास प्रभु और संकीर्तन प्रभु हम ट्रेन में जा रहे थे, कल्याण जा रहे थे प्रोग्राम के लिए। तो हुआ क्या कि बैठने के लिए हमें अंदर जगह नहीं मिली, तो हम लोग बाहर जहां पर वो जो फुटबोर्ड होता है वहां पर सब हम तीनों थे। तो संकीर्तन प्रभु अपना जप कर रहे थे, हम तीनों ही जप कर रहे थे, तो एक व्यक्ति वो घूर घूर कर संकीर्तन प्रभु को देख रहा था। और वो इस प्रकार से घूर घूर कर देख रहा था, तो मैं तो नया नया ज्वाइन हुआ था, तो श्रीनिवास प्रभु इसको घूर घूर कर देख रहे थे। और संकीर्तन प्रभु एकदम शांत स्वभाव के, बीच में थोड़ा स्माइल मारते उसे देखकर, और वो बिल्कुल ऐसा कोई वो हंसी के मूड में नहीं था। तो अचानक वो संकीर्तन प्रभु से पूछता है, इतना नाटक क्यों करते हो तुम लोग, ये सब माला झोली, ये तिलक और ये सब शिखा, ये सब ये ढोंग क्यों इतना, ये सब क्या है, इतना बड़ा बड़ा लगाया तिलक दूसरे को दिखाने के लिए। तो संकीर्तन प्रभु एकदम शांत तरीके से, नहीं ये भगवान के चरण कमल है यार। क्या वो ऐसे इस प्रकार से उद्दंडता से। तो श्रीनिवास प्रभु अपना जब छोड़े, माला को डाला गले में और वो बीच में आ गए, तो संकीर्तन प्रभु समझ गए, बोले प्रभु जी नहीं मैं बोल रहा हूं। तो श्रीनिवास प्रभु बोले, प्रभु जी आप थोड़ा साइड में जाइए, मैं बात करता हूं इससे। तो ये व्यक्ति इनको देखकर थोड़ा ये हो गया। तो श्रीनिवास प्रभु पूछते हैं, क्या तेरे को क्या प्रॉब्लम है उस तिलक लगाया था, तेरे बाप से मांगा था तिलक। तो वो तो अब डर गया एकदम, लेकिन नहीं मैं नहीं नहीं उसने तिलक लगाया है, मैं तिलक लगाऊं किधर भी लगाऊं तिलक, तुझे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है जब बाहर चल गाड़ी से। वो संकीर्तन प्रभु एकदम शांत तरीके से उनको समझा रहे हैं। तो यदि अब मुझे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं उठा क्योंकि वो श्रीनिवास प्रभु ने ऐसा कहा, परंतु यदि संकीर्तन प्रभु ऐसा करते कि मानो अब कैरेक्टर्स चेंज कर देते हम, कि संकीर्तन प्रभु बीच में आके, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तो फिर प्रश्न उठता कि संकीर्तन प्रभु को क्रोधित करने वाला कौन था, उसकी तरफ देखते। तो वैसे ही परीक्षित महाराज अब सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि मुझे उनके बारे में जानना है जिन्होंने नारद मुनि जैसे महामुनि इनको क्रोध दिला दिया, ये कौन थे और क्यों इनको शापित किया नारद मुनि ने। तो अब सुखदेव गोस्वामी को मिल गया आगे की कथा सुनाने का अवसर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धननात्मजौ कैलाश उपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटौ। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये दो कुबेर के पुत्र, इनका स्तर क्या था, ये किस संघ में थे। तो पहले इनका स्तर बता रहे हैं, कौन से संघ में ये अपना जीवन बिता रहे थे, और फिर उसे देखते हुए उन्होंने क्या अपराध किया, तब समझ में आएगा कि वो अपराध कितना गहरा था, कितना बड़ा था, कितना गंभीर था। तो सबसे पहले कहते हैं, रुद्रस्य अनुचरों, ये दोनों नलकुवर और मणिग्रीव, ये भगवान श्री शिवजी रुद्र इनके अनुचर थे। यदि संस्कृत का ये जो शब्द है अनुचर, इसे हम समझने जाएं, अनुचर का अर्थ क्या होता है, जो उनके पीछे पीछे चले, अनुचर उनके पद चिन्हों पर चलते रहे। तो सोचिए महादेव भगवान श्री शिवजी इनके पद चिन्हों पर ये चलते थे, शारीरिक रूप से भी रुद्रस्य अनुचरो। तो इनको एक नाम मिला हुआ था, नलकुवर और मणिग्रीव को यह नाम मिला हुआ था, रुद्रस्य अनुचरो, शिव अनुचर। सोचिए इस प्रकार से प्रख्यात थे पूरे विश्व में शिव अनुचर, ये दोनों शिव अनुचर हैं। तो यह उनका पोजीशन था शिव अनुचर होने का। तो यहां पर पहले पोजीशन बता रहे हैं इनका, फिर परीक्षित महाराज को समझ में आएगा कि कितना गहरा अपराध था, क्यों नारद मुनि ने ऐसा शाप दिया। तो सबसे पहले शिव अनुचर, रुद्रस्य अनुचरो, और फिर धनदात्मजो। ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन हासिल की थी और शिव अनुचर बन गए थे। बचपन से पैदाइशी रईस खानदान के कुबेर, सोचिए कुबेर के पुत्र, कुबेर को सभी जानते हैं ना, तो कुबेर के जो कि देवताओं के ट्रेजरर हैं, उनके दोनों पुत्र, तो पैदाइशी रईस और इसके ऊपर शिव अनुचर। और ऐसा नहीं कि केवल वो शिवजी से कभी कभी शिवरात्रि पर मिलने आते थे, नहीं, कैलाश उपवन्नी कि कैलाश धाम में ही वो निवास करते थे। भगवान शिवजी का जो धाम है महेश धाम, वहां पर निवास करते थे ये दोनों। सोचिए निवास स्थान भी भगवान शिवजी के साथ उपवन में, वहां के उपवन में। परंतु ये सब होने के बावजूद कार्य क्या किया करते थे वो, और इस दिन जब शाप मिला तब क्या कर रहे थे। मंदाकिन्याम मद उत्कटौ, मंदाकिनी गंगा। सोचिए ये जो भौतिक संसार में हम जो गंगा में जाकर स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, जो कैलाश धाम की गंगा है वो वहां का स्रोत है, मंदाकिनी गंगा कहते हैं उसे। तो ये मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे थे, सोचिए उस गंगा में। तो ये स्तर बता दिया इनका, परंतु उनकी स्थिति कैसी थी अब बता रहे हैं कि उन्होंने कौन सा अपराध किया। पहले उनका पोजीशन बता दिया, उनका सौभाग्य बता दिया, और इतना सब कुछ होने के मिलने के बावजूद अपराध क्या किया उन्होंने। वारुणिम मदिराम पित्वा, कि मदिरा में मदमत्त, वारुणी मदिरा में मदवत्त। मदा घूर्णित लोचनौ, वो मदिरा पीने के बाद उनकी जो लोचन, उनकी जो आंखें थी घूर्णित, आंखें घूम रही थी, होता है ना, बहुत लोग हां बोल रहे हैं। जैसे कई बार जब कोई ज्यादा पी लेता है तो उसे लगता है कि सारी दुनिया घूम रही है। वो लोग बोलते हैं कि दुनिया क्यों घूम रही, रुको थोड़ा, दुनिया नहीं घूम रही, घूर्णित लोचनौ, ये लोचन घूमते हैं अंदर। तो ये दोनों इतना पिए हुए थे कि इनके लोचन घूर्णित घूम रहे थे इनकी दोनों आंखें। इतना ही नहीं, स्त्री जनैर अनुगायत भीस, और एकदम साधारण सी कोई लोक स्त्रियां, उनके साथ गीत गायत भी, उनके साथ ये नहीं कि कीर्तन कर रहे थे भगवान का, ऐसे ही यहां वहां के कुछ गीत, फिल्मी संगीत। और इतना ही नहीं, वो इन स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में मंदाकिनी गंगा में प्रवेश किया। अब सोचिए कि इतना बड़ा स्तर और इतना बड़ा सौभाग्य, स्वयं शिवजी का संग और शिवजी के सारे जो बड़े बड़े पार्षद हैं उनका संग, कैलाश के उपवन में मंदाकिनी गंगा में लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए जाते हैं, ये और प्रदूषित उस गंगा में अपने आप को कर रहे थे इन सब कार्यों से। इसलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो अपराध है वो अपराध पहले जांच लेना चाहिए कि किस जगह पर हुआ है, किस स्थिति में हुआ है, और उस व्यक्ति का स्तर क्या है। जैसे यहां पर नलकुंवर और मणिग्रीव, यदि नलकुंवर और मणिग्रीव ने यही कार्य भौतिक संसार में किया होता तो वो अपराध इतना गहरा नहीं था, परंतु ये अपराध किया कैलाश के उपवन में, मंदाकिनी गंगा के मध्य में, अंत प्रविष्ट कहा गया, बीच में जाकर, बाहर भी नहीं। तो जगह सबसे पहले, इतनी शुद्ध जगह पर, जैसे कि कोई यदि मंदिर में आके सिगरेट पीता है तो लोग कहेंगे अरे क्या है ये, मंदिर में तुम आकर ये कर रहे हो। वही सिगरेट पीना वो कोई अच्छा कार्य नहीं, परंतु वो बाहर यदि किधर करेगा, यदि देशी दारू के दुकान में बैठकर सिगरेट पी रहा है तो लोग इतना उसे अपराधी नहीं मानेंगे। परंतु मंदिर में जगह का बहुत महत्व बताया गया है कि वही अपराध कौन सी जगह पर किया गया है। तो सबसे पहले तो जगह की प्रधानता थी, जैसे जगह की प्रधानता के ऊपर एक कथा है। एक बार भगवान विष्णु शिवजी से मिलने गए तो वो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर कैलाश धाम की तरफ गए, तो जैसे ही अब भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर, और शिवजी ने दूर से देखा गरुड़ जी इतने बड़े विशाल, तो भगवान शिवजी समझ गए कि भगवान विष्णु आ रहे हैं मिलने के लिए। तो शिवजी तुरंत खड़े हो गए और स्वागत करने के लिए भगवान विष्णु का। अब भगवान शिवजी के कंठ पर सर्प होते हैं, सब जगह हाथों पर कंठ पर ये सर्प होते हैं, उनका नेकलेस है। सोचिए क्या स्तर है शिवजी का, कि मानो कि कोई बर्थडे पार्टी में कोई ये ऑफर करे किसी को नेकलेस, किसका, कोबरा, इसे पहनिए। तो मेरे ख्याल से शायद शिवरात्रि पर पार्वती देवी ये सब प्रकार के नेकलेस लाकर देती होंगी कि उनका ब्रेसलेट और आमलेट और ये सब कुछ सर्प, ये सब उनके आभूषण हैं, खोपड़ियों की माला। ये बताया गया है, कवि कर्णपुर बताते हैं कि उस प्रकार की माला होती है, खोपड़ियों की माला, स्कल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी माला और फिर भस्म। तो जैसे ही शिवजी अब खड़े हुए, हालांकि शिवजी बहुत सुंदर हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद शिवजी की सुंदरता बताई गई है चतुर्थ स्कंध में, कि ऐसे इतने सुंदर भगवान शिवजी कि भगवान शिवजी को यदि कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए, इतने सुंदर भगवान शिवजी। तो भगवान शिवजी खड़े हुए तो अब गरुड़ जी ने, भगवान विष्णु ने देखा शिवजी को और गरुड़ जी ने देखा सर्प को, क्योंकि गरुड़ जी का भोजन है, होते हैं सारे सर्प। तो ये सर्प गरुड़ जी को देख रहा है और सर्प फुफकारने लगा, जोर जोर से गरुड़ जी के ऊपर फुफकारने लगा। तो गरुड़ जी सर्प को देखते हुए कहते हैं कि तुम बहुत फुफकार रहे हो मेरे ऊपर, और कहते हैं स्थान प्रधानाम न बल प्रधानाम, तुम में कोई बल नहीं है, केवल तुम जिस स्थान पर हो वो स्थान पर से तुम्हें बल मिल रहा है। स्थान प्रधानाम न बल प्रधानाम, तुम्हारा स्थान कहां है, महादेव का कंठ वो स्थान है, और उस स्थान के वजह से तुम्हें पावर मिल रहा है, और वो पावर का गलत इस्तेमाल कर मुझ पर फुफकार रहे हो, थोड़ा वहां से बाहर निकलो फिर बताता हूं। कई बार लोग बोल देते ना थोड़ा बाहर आना, तो ऐसे गरुड़ जी ने इस प्रकार से कहा उस सर्प को, बाहर थोड़ा आओ फिर बता, फिर फुफकारो थोड़ा। तो इससे क्या समझ में आता है कि कई बार हमारा जो बल होता है वो हमारा बल नहीं होता, वो स्थान का बल होता है, और उस स्थान के बलबूते पर हम फुफकारने लगते हैं। जैसे कि यदि हम इस्कॉन संस्था में हैं तो कई बार प्रसिद्धि इस्कॉन संस्था की होती है, और हम समझते हैं कि हमने सब कुछ किया। एक उदाहरण से हम समझ पाएंगे कि यदि हमारे गुण या हमारी जो भी भक्ति है उसकी तुलना हम एक गोली से करें, बंदूक की गोली। यदि उसकी तुलना हम बंदूक की गोली से करें तो मान लो कि आपको किसी के ऊपर प्रहार करना है तो आपको केवल गोली हाथ में दे दी, बंदूक नहीं, मारो, तो उसको गोली फेंक कर मारेंगे तो वो मरेगा क्या? कितनी भी जोर से गोली फेंक कर मारो, क्या उसके शरीर में घुसेगी वो गोली? वही गोली जब बंदूक में से निकलकर आती है तो वही गोली में कितनी शक्ति होती है। तो जब हम भगवान के इस आंदोलन के संपर्क में होते हैं तो ये आंदोलन की तुलना उस बंदूक से कर सकते हैं। और जब हमारी चेतना, हमारी भक्ति, जो भी सेवा है, इस बंदूक से बाहर आती है तब उसमें बल आता है। इसलिए हमें ये परख लेना चाहिए कि यदि मान लो श्रील प्रभुपाद का जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये सब जगह पर फैल रहा है और बहुत वृद्धि हो रही है, तो जो इस्कॉन की सफलता है ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो मेरी सफलता है। द सक्सेस ऑफ द सोसाइटी इज नॉट माई इंडिविजुअल सक्सेस। कि यदि संस्था सफल हो रही है तो यह कोई आवश्यक नहीं कि मैं भी भगवत धाम जाऊंगा। तो हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी सफलता प्राप्त करनी है इस आंदोलन के अंदर। आंदोलन की सफलता तो होगी निश्चित है, चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया है, परंतु इस आंदोलन के अंदर हमारी सफलता कहां तक हो रही है यह हम पर निर्भर करता है। इसलिए कई बार हम भी जब भक्तों के मध्य में और मंदिर में, तो हम भी उस सर्प की तरह फुफकारते हैं दूसरों के ऊपर बाहर, तो बाहर वो भी क्या कहेंगे, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, ये स्थान का बल है, तुम्हारा बल नहीं है, थोड़ा बाहर आओ मंदिर के गेट के। इसलिए माया देवी हो सकता है मंदिर के गेट के बाहर से हमें बोले कि तुम अभी तो इसके बीच में बैठे हो, सब भक्तों के बीच में बैठे हो, इसलिए इतना जोर जोर से बोलते हो, माया देवी ये है, दैवी ये है, शगुणमयी मम माया दुरत्यया। तो माया देवी कहती है थोड़ा व्यासासन से नीचे उतरो, गेट के बाहर आओ और फिर फुफकारो, थोड़ा कौन सा श्लोक याद आता है देखते। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि हमारी सफलता और भगवान के आंदोलन की सफलता, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। तो यहां पर स्थान का बल लेकर दुरुपयोग कर रहे थे नलकोर और मणिग्रीव कि कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, अरे हम शिव के अनुचर हैं, कैलाश के उपवन में, मंदाकिनी गंगा में, और धनत के आत्मज हैं, कुबेर के पुत्र हैं, हमारा कौन क्या बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी देखो पूरा ही बांका करके खड़ा करेंगे नारद मुनि। तो नारद मुनि वहां पर पहुंचे और जैसे ही नारद मुनि वहां पर पहुंचे तो वो जो स्त्रियां थीं, वो सारी स्त्रियां उन्होंने बाहर निकलकर अपने आप को ढक लिया कपड़ों से, परंतु ये दोनों नारद मुनि को इस प्रकार से देखने लगे कि ये कौन रंग में भंग डालने आ गया यहां। इसलिए जो इंद्रिय भोगी होते हैं वो जब भी भक्तों को देखते हैं तो इसी प्रकार का व्यवहार रहता है उनका। इसे कई बार हमने अनुभव किया है कि जब हम कहीं पर जाते हैं ट्रेन से और किसी और के कूपे में हमारा सीट रिजर्व्ड होता है, तो जैसे ही कई बार हम अपना सीट लेने के लिए उस कूपे में जाते हैं तो बाकी लोग यदि किसी और मूड से आए हुए हैं तो कई बार वो बोलते, अरे बाबा आ गए आज तो, अरे महाराज आ गए आज तो, गया आज की रात तो बर्बाद। तो फिर वो जगह सीट है हाँ वहां बदली करते हैं क्योंकि बहुत कुछ उनको करना होता है। रात के समय कबाब में हड्डी, क्योंकि सब करना है कबाब वगैरह और ये सब कुछ करना है, तो फिर महाराज जी बीच में रंग में भंग डालने आ गए। तो ये नलकोर और मणिग्रीव, अरे ये कौन ये साधु महात्मा यहां पर आ गए। तब जैसे ही नारद मुनि ने इन दोनों को देखा इस अवस्था में, तो सोचिए नारद मुनि इनको इस अवस्था में कैसी नजरों से देख रहे हैं, यही तो प्रश्न था परीक्षित महाराज का। तो नारद मुनि ने शाप दिया इनको, शापम दास्यन इदम जगौ तव दृष्ट्वा मदिरा मत्तौ श्री मदांदौ सुरात्मजौ, कि ये केवल अंधे मदिरा पीने से नहीं थे, एक और तरीके से ये अंधे थे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। परंतु पहले नारद मुनि के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहां पर, पहले कहा कि नारद मुनि ने श्राप दिया, और परीक्षित महाराज का प्रश्न कि नारद मुनि को क्रोध कैसे आया, क्योंकि क्रोध आएगा तब तो श्राप देंगे, ऐसे तो नहीं नारद मुनि हंसते हुए नल कुंवर मणिग्रीव अच्छा कैसे हो, चलो पेड़ बनो। कौन सा वाला बनना चाहोगे, आम का, अमरूद का, अर्जुन, कौन सा वृक्ष? ऐसा नहीं, हंसते हुए नहीं। तो श्राप जब भी दिया है तो क्रोध में दिया होगा, परंतु यहां पर उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, न तो वो श्राप था न वो नारद मुनि का क्रोध था। वो कहते हैं तयोर अनुग्रहार्थाय, नारद मुनि का अनुग्रह था इन दोनों के ऊपर। और यदि हम देखें वो तथाकथित श्राप को, यदि हम देखें कि वो अनुग्रह कैसे था, अब देखिए ये लोग नग्न स्थान कर रहे थे, तो जो व्यक्ति नग्नता का प्रदर्शन करता है प्रकृति के नियम के अनुसार तो उसे पेड़ बनना ही पड़ता है। तो ये तो वैसे भी अगले जन्म में पेड़ बनने वाले थे, प्रकृति के नियम के अनुसार पेड़ बनने वाले थे ये। इसलिए हमें एक भक्त बता रहे थे कि ये जो हॉलीवुड और बॉलीवुड है ना, इनको ये नाम ऐसे ही नहीं दिया गया, क्योंकि ये हॉलीवुड और बॉलीवुड में इतना अंग प्रदर्शन होता है तो प्रकृति के नियम के अनुसार उनको वुड बनना ही है, इसलिए नाम दिया इस प्रकार से। तो फिर हम एक प्रवचन में बोल रहे थे, वो अंग्रेजी का प्रवचन, तो हमने कहा कि वॉट एवर द हॉलीवुड एंड बॉलीवुड आर डूइंग टू काउंटरैक्ट द रिएक्शन दे हैव टू वर्शिप हॉलीवुड, और वो कौन है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो यहां पर प्रकृति के नियम के अनुसार नलकोर और मणिग्रीव ये दोनों हॉलीवुड बनने ज्वाइन होने वाले थे, मतलब पेड़ या वृक्ष बनने वाले थे, परंतु अनुग्रह क्या कि अर्जुन जैसे वृक्ष बनाए, बहुत शुद्ध माना गया है इन दोनों वृक्षों को, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ये। तो ये वृक्ष, और वो भी कहां पर, ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल में कहां, नंद गोकुल, नंद गोकुल में कहां, नंद भवन उनके आंगन में। इससे बड़ा अनुग्रह क्या हो सकता है इन दोनों के ऊपर, क्योंकि ये हम कैसे समझ सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे बड़े गुणावतार और उद्धव जैसे भगवान के निजी पार्षद, इनकी एकमात्र इच्छा है कि ये ब्रजमंडल में घास के तिनके के समान उनका स्वरूप हो, और वो भी ब्रजमंडल में मध्य में नहीं, नंद भवन के आंगन में नहीं, कहीं बाहर। ये उनकी आशा है कि हो सकता है कि हमारी भक्ति या तपस्या के वजह से हमें ये पद मिले। तो सोचिए यहां पर
घास का तिनका नहीं, दो बड़े वृक्ष, वो भी ब्रजमंडल में नहीं, नंद गोकुल, नंद गोकुल में नंद भवन के आंगन में, जहां पर अब भगवान अपनी लीला 2400 घंटे वहां करने वाले हैं, तो लाइव टेलीकास्ट इन दोनों को मिलने वाला है। तो ये सबसे पहला अनुग्रह। इसके पश्चात यदि साधारण तरीके से ये वृक्ष बनते तो सब कुछ भूल जाते, क्या अपराध इन्होंने किया, परंतु नारद मुनि ने वृक्ष योनि में डालने के साथ साथ इनकी स्मृति बनाए रखी, स्मृति स्यान, कि तुम्हें याद रहेगा कि तुमने क्या अपराध किया। तो यह भी एक अनुग्रह था, क्योंकि उस याद के वजह से पश्चाताप की अग्नि में ये शुद्ध होंगे जब तक कि भगवान अवतरित नहीं होते। तो पश्चाताप से बहुत शुद्धिकरण होता है हृदय का। तो पश्चाताप कब होगा? जब याद रहेगा क्या अपराध किया। तो स्मृति स्यान, ये दूसरा अनुग्रह। तीसरा अनुग्रह, लब्धा भक्ति, तुम्हारे अंदर की जो भक्ति है वो धीरे धीरे भक्ति जागृत होगी। कौन सी भक्ति? कृष्ण भक्ति। और चौथा अनुग्रह, सबसे महत्वपूर्ण अनुग्रह नारद मुनि ने ये तथाकथित श्राप द्वारा दिया, वासुदेव सानिध्यम, कि फिर सानिध्य होगा श्री वासुदेव भगवान का, वो स्वयं आकर अपना संग देंगे, तुम्हें वहां से हिलने की भी जरूरत नहीं। हिलेंगे कैसे? पेड़ के रूप में। स्वयं वासुदेव आएंगे और वो स्वयं आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये चौथा अनुग्रह। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो श्राप नहीं था, वो नारद मुनि का अनुग्रह था। परंतु नारद मुनि, हालांकि बहुत से श्लोकों में नारद मुनि ने बहुत सुनाया श्राप देने से पहले कि तुम किस प्रकार के अंधेपन में जी रहे हो, तो नारद मुनि कहते हैं कि जितने भी प्रकार का अंधापन होता है उसमें ये जो अंधापन है, अभिमान, अहंकार का जो तुम्हारे अंदर है, इस अंधेपन को मैं दूर करना चाहता हूं। एक सुंदर श्लोक में बताया गया है कि हम हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिसके कारण हम क्या क्या खो बैठते हैं। सुंदर श्लोक है, एक सुभाषित है, जिसमें कहा है, जरा रूपम हरति ही धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्म आचरम आसूय क्रोध श्रियम शीलम अनार्य सेवा हियम कामह सर्वम एव अभिमानम। समझ गए? नहीं। कहा गया है कि किसी मनुष्य के जीवन में जरा जो है वो व्यक्ति के रूप को हर लेती है। जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को। तो कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, बुढ़ापा उस सुंदरता को हर लेता है। जरा रूपम हरति, आशा धैर्यम हरति। जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत आशा आकांक्षा होती है तो उसके धैर्य को वो आशा हर लेती है, पेशेंस को। आशा के कारण वो व्यक्ति धैर्यवान नहीं रह पाता। तो किसी व्यक्ति के धैर्य को हरने के लिए आकांक्षा या आशा आती है। मृत्यु प्राणम हरती, मृत्यु प्राण को हर लेती है। द्वेष धर्म आचरण हरती, जब किसी के अंदर द्वेष होता है किसी के प्रति, तो द्वेष के कारण वो द्वेष उस व्यक्ति के धर्म आचरण को हर लेता है। क्रोध ऐश्वर्यम हरती, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत क्रोध होता है तो उसका सारा ऐश्वर्य वो क्रोध हर लेता है। अनार्य सेवा शीलम हरति, किसी व्यक्ति के अंदर यदि शील, गुड कैरेक्टर जिसे कहते हैं, वो शील चरित्र, अनार्य सेवा, अनार्यों की सेवा करने से वो शील चरित्र वो हर लेता है उस व्यक्ति का। अनार्य कहते हैं दुष्ट व्यक्ति, असंस्कृत व्यक्ति, उनकी कोई सेवा करता है तो। काम वासना लज्जा हरती, कि किसी के अंदर बहुत काम वासना है तो कोई लज्जा नहीं रहती उसके अंदर, वो काम वासना उसकी लज्जा को हर लेता है। परंतु इस श्लोक में कहा गया है सर्वम हरति अभिमानम, कि इतना बड़ा लंबा लिस्ट जो दिया है ये सबको एक साथ एक व्यक्ति हर लेता है, या एक भावना अभिमान अहंकार। वही नारद मुनि कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं देख पा रहे और तुम क्या अपराध कर रहे हो उसे नहीं देख पा रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये इतना बड़ा अभिमान तुम्हारे आड़े आ रहा है, तुम्हारे आंखों को अंधा बना रहा है। कौन सा अभिमान? तुम शिव अनुचर मानते हो अपने आप को, तुम कुबेर के पुत्र मानते हो, इतना ऐश्वर्यशाली पैसे वाला मानते हो अपने आप को। तो इसलिए यहां पर नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी के अनुसार नारद मुनि बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। और आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे कि नलकोर और मणिग्रीव, ये भगवान श्री दामोदर ने जब इनका उद्धार किया तो नलकोर और मणिग्रीव ने सबसे पहले नारद मुनि का गुणगान किया कि हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया कि हमें पेड़ के योनि में डाल दिया। वो आगे चलकर वो सुनाएंगे। तो अब तक हमारी कथा में भगवान बंधे हुए हैं। अब तक सुखदेव गोस्वामी ने अनुमति नहीं दी है कि भगवान खुल जाएं। तो इसलिए आज कथा का विराम तो हम यहीं पर दे रहे हैं, परंतु क्योंकि भगवान अब तक उखल से बंधे हुए देख रहे हैं, इसलिए आज हम हमारे कीर्तन में गाएंगे श्री दामोदर अष्टकम। क्योंकि इसके बाद जब भगवान खुल जाएंगे तो फिर केवल कार्तिक में ही गाने मिलेगा, हालांकि हम रोज भी गा सकते हैं, परंतु क्योंकि कथा में अब तक बंधे हुए उखल से हैं और देख रहे हैं तो हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। और माता यशोदा तो गृह कार्यों में लगी हुई है, तो चलो हम ही बैठकर भगवान के सामने श्री दामोदर अष्टकम गाएंगे। बोलो श्री दामोदर भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।